Srimad Bhagavatam, 9th canto, chapter 6, text 49.
Srimad Bhagavatam, 9th canto, adhyaya sankhya 6, shloka sankhya 49.
Fix his mic. One here. Fix this mic. Volume's too low. This volume's fine. His volume's too low. That's what I had done before. Srimad Bhagavatam, 9th canto, chapter 6, text 49.
Srimad Bhagavatam, 9th skand, adhyaya sankhya 6, shloka sankhya 49.
Sa kadachit upasina atma pa navatam atmanah
atma pahan ramatmanah
atma panam maham atmanah
atma pahan ramatmanah
atma panatvam atmanah
atma pahan vahatmanah
Dadarsha Bhava
Chacharya
Dadarsha Bhava Chacharya
Dadarsha Bhava Chacharya
Mina Sangha Samuttitam
Mina Sangha Samuttitam
Sakadachit Upasina
Sakadachit Upasina Atma pahan vamatmanah
Dadarsha bhavacharya
Dadarsha bhavacharya
Mina sangha samuttitam
Mina sangha samuttitam
Sakadachit upasena
Sakadachit upasena
Atma pahanavam atmanah
Atma pahanavam atmanah
Dadarsha Bhavacharya
Dadarsha Bhavacharya
Mina Sangha Samuttitam
Mina Sangha Samuttitam
Sakadachit Upasina
Sakadachit Upasina
Atma Panavam Atmanah
Atma Panavam Atmanah
Dadarsha Bhavacharya
Tadarsha Bhavacharya
Mina Sangha Samuttitam
Mina Sangha Samuttitam
Next
Sakadachit Upasina Atma Pahanvam Atmanah Tadarsha Bhavacharya Mina Sangha Samuttitam Sakadachit Upasina Atma Pahanvam Atmanah Tadarsha Bhavacharya Mina Sangha Samuttitam Sakadachit Upasina Atma Pahanvam Atmanah Dadarsha Bhavacharya Mina Sangha Samuttitam Sakadachit Upasina Atma Pahanvam Atmanah Dadarsha Bhavacharya Mina Sangha Samuttitam Sakadachit Upasina Atma Pahanvam Atmanah Dadarsha Bhavacharya Mina Sangha Samuttitam
Vaishnavis
Sakadachit Upasina Atma paha novamatmanah. Dadarsa barichacharyo. Meena sangha samuttitam. Sakadachit upasina. Atma pahan ramatmanah. Dadarsa barichacharyo. Meena sangha samuttitam. Sakadachit upasina. Atma pahan vatmanah. Tadarsa barichacharyo. Meena sangha samuttitam.
Translation.
Anuvad.
Thereafter, one day, while Subari Muni, who was expert in chanting mantras, was sitting on a secluded place.
Tatpaschat, mantrochar karne mein patu Subari Muni, ek din jab ekant sthan mein baithe the.
He thought to himself about the cause of his fall down.
To unhone apne patan ke karan ke vishay mein socha.
Which was simply that he had associated himself with the sexual affairs of the fish.
कारण यही था कि उन्होंने एक मछली के मैथुन से अपने आप को संबद्ध कर लिया था.
Poor part by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Vishwanatha Chakravarti Thakur remarks that Subari Muni had fallen from his austerity because of a Vaishnava aparad.
तो तात्पर्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका है कि Subari Muni का उनकी तपस्या से पतन वैष्णव अपराध के कारण हुआ था.
The history is that when Garuda wanted to eat fish, Subari Muni unnecessarily gave the fish shelter under his care.
कथा इस प्रकार है कि जब गरुड़ ने मछली को खाना चाहा, तो Subari Muni ने बिना कारण उस मछली को अपनी शरण में रख लिया.
Because Garuda's plans for eating were disappointed, Subari Muni certainly committed a great offense. To a Vaishnava.
क्योंकि गरुड़ उस मछली को न खा पाने से निराश हुआ, इसलिए Subari Muni ने एक वैष्णव के प्रति एक घोर अपराध किया था.
Because of this Vaishnava aparad, an offense at the lotus feet of a Vaishnava, Subari Muni fell from the exalted position of a mystic tapasya.
इस वैष्णव अपराध के कारण Subari Muni का योग तपस्या के उच्च पद से पतन हुआ.
One should not therefore impede the activities of a Vaishnava.
अतएव मनुष्य को चाहिए कि वैष्णव के कार्य में बाधा न डाले.
This is a lesson we must learn from this incident concerning Subari Muni.
तो हमें Subari Muni से संबंधित इस घटना से यही शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए. Shri Chaitanya Manobhistam Sapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Mandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Guru Vaishnavansha Shri Rupam Sagrajatam Saigana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadhavaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Paran Sagana Lalita Shri Vishakhanvitamsha He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchan Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishamano Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpata Rupescha Kripa Sindhu Devacha Patita Nam Pavane Pyo Vaishnavi Pyo Namo Namaha
Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda
Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
So, this is the story of the fall down of Subari Muni.
तो यह कथा है Subari Muni के पतन का.
He was a great sage who was performing severe austerities. He was a yogi.
तो एक बहुत बड़े योगी थे जिन्होंने कि बहुत कठिन तपस्या की थी।
I say was, but it's possible he might still be alive, you know, because these yogis in our universe even, they generally reside on the higher planets. They don't. You can't imagine that a yogi like Subari is going to hang around on the Earth planet to deal with McDonald's and cow slaughter.
हो सकता मैं ऐसा कह रहा हूँ कि ये जो घटना है भूतकाल में हुई, लेकिन जो योगी होते हैं बहुत शक्तिशाली होते हैं, वो उच्च लोकों में अभी भी हो सकते हैं स्थित हो। ऐसा हो सकता है कि सौबड़ी मुनि जैसे ऋषि जो अभी इस पृथ्वी पर भी मैकडॉनल्ड्स और ऐसे जो अन्य चेन है वहाँ के लिए।
Yogis like Subari Muni, they have no problem with interplanetary travel.
तो जो सौबड़ी मुनि के समान जो योगी होते हैं उनको अंतर जो ग्रह होते हैं ग्रहों पे आने जाने में कोई समस्या नहीं है।
They don't get into some very crude petrol machine that explodes like the NASA space shuttle, you know, twice it exploded, twice, not once, twice it exploded.
तो ये जो ऋषि होते हैं ये ऐसे नहीं होते हैं जैसे कि नासा जो कि एक अमेरिका की संस्था है उसने स्पेस शटल भेजा था स्पेस के अंदर, तो वो दो बारी वो फट गया, वो जो उनका जो अभियान था वो असफल रहा, लेकिन जो योगी होते हैं उनके साथ ऐसा नहीं होता। हरे कृष्ण।
Come on, go fix the volume. His volume, my volume is fine. His is too soft. So to get the context of what's going on here, and not everybody present comes to Bhagavatam class every day, so I will review the beginning of the story, not exactly the beginning, but the important parts here.
तो उन भक्तों के लिए जो प्रतिदिन कक्षा में नहीं आ पाते, मैं ये जो कथा चल रही है उसकी शुरुआत से कुछ जो मुख्य बिंदु हैं वो बताऊंगा।
So we're going back to text number 41.
तो हम श्लोक संख्या 41.
Those of you who were here wouldn't be able to tell me what it said anyways. It's Kali Yuga. Manda samanda mandyo manda bhagya.
हो सकता है आप में से कुछ लोग प्रतिदिन आते भी होंगे, लेकिन क्योंकि कलयुग का प्रभाव ऐसा है कि हम भूल जाते हैं, इसलिए हम इसको
of memory, you know.
तो जो हमारी याददाश्त है बहुत छोटी होती है।
So in the it's actually verse number 40.
तो ये श्लोक संख्या 40 है।
39 and 40.
39 और 40 एक साथ है दोनों श्लोक।
Go back to verse number 40. Subari Rishi was engaged in austerity deep in the water of the river Jamuna.
Subari Rishi Yamuna nadi ke gahre jal mein tapasya mein leen the.
So he was not in any ordinary mundane place. He was in the Jamuna even.
To aisa nahi ki wo kahin aise waise jagah pe the jo Yamuna nadi ke andar the.
But that could not protect him from Vaishnava Parad. Try to see.
आप देखने का प्रयास कीजिए कि उनका यमुना नदी के अंदर होना भी उनको वैष्णव अपराध करने से बचा नहीं पाया।
So Srila Prabhupada is explaining that his apparad was he interfered with Garuda's dinner.
तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं कि उन्होंने गरुड़ देव का जो रात्रि का भोजन था उसके साथ छेड़छाड़ किया।
I mean, Garuda is non-veg.
तो जो गरुड़ है वो non-veg.
If you don't like that, you can go discuss it with him.
तो हम लोग
no, Garuda, you should be vegetarian.
तो हम ऐसा नहीं कह सकते गरुड़ देव को कि आपको जो है वेजिटेरियन होना चाहिए, आपको साग सब्जी
भात।
हो सकता है वो बहुत तेज झपट्टा मारेंगे और आपका।
So it is natural he eats snakes and fish.
तो वो स्वाभाविक रूप से जो है मछलियां और सांपों को खाते हैं।
But anyways, what happened is Subari Muni saw a pair of fish engaged in sexual affairs underwater.
तो ऐसा हुआ कि सौबड़ी मुनि ने जो मछली के एक जोड़े को मैथुन में स्थित देखा पानी के अंदर.
Thus he perceived the pleasure of sex life.
तो उनको जो है वो मैथुन जीवन के आनंद की अनुभूति हुई.
And induced by this desire, he went to King Mandahata and begged for one of the king's daughters.
तो इससे प्रेरित होकर राजा मानधाता के पास गए और उनकी एक कन्या की याचना की।
In response to the request, the king said, O Brahmana, any of my daughters may accept any husband according to her personal selection.
तो इस याचना के उत्तर में राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, मेरी कोई भी पुत्री अपनी इच्छा से किसी को भी पति चुन सकती है।
So King Mandata was at that time was the king of Mathura.
तो उस समय जो राजा मंदाता थे, वो मथुरा के राजा थे।
And Subhadra Rishi was engaged in austerity deep within the water of the river Jamuna.
और साबरी मुनि जो हैं, वो यमुना नदी के गहरे जल के अंदर अपनी तपस्या में स्थित थे।
Then after viewing the fish gauge and sexual activity,
और जो मछलियों के जोड़े को मैथुन जीवन में रत देखकर,
he became afflicted by lust himself.
तो स्वयं विषयी जीवन के सुख से प्रभावित हो गए।
So he emerged from the water and went to King Mandata.
तो वो पानी से बाहर निकले और राजा मंदाता के पास गए।
One of the king's daughters become his wife.
और उनसे याचना की कि उनकी एक पुत्री उनकी पत्नी बन जाए।
So, looking again at today's verse, why did he become so weak?
तो आज का जो श्लोक है, अगर उसपे देखें कि वो क्यों इतना कमजोर पड़ गए?
So, Sri Prabhupada is quoting from the purports by Vishwanath Chakravarti Thakur.
तो श्री प्रभुपाद जी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के तात्पर्यों से यहाँ पे इंगित कर रहे हैं।
Try to understand. This is a sign of a bona fide acharya.
तो आप समझने का प्रयास कीजिए, यह एक निशानी है एक परंपरा में स्थित आचार्य की।
They faithfully repeat the previous siddhanta or conclusions of the prior acharyas. That is a real acharya. Anyone else is bogus.
तो एक जो वास्तविक आचार्य होते हैं, वो पुराने जो परंपरा में आए गुरु हैं, आचार्य हैं, उनके द्वारा कहे गए बातों को ही दोहराते हैं।
So, it might be some time before any of you happen to be in Los Angeles, California, USA, where I come from.
तो हो सकता है आप में से कोई लॉस एंजेलिस कैलिफोर्निया से होंगे, जहाँ से मैं हूँ।
But there, every day in the morning, Srila Prabhupada's room is open for darshan.
तो वहाँ पे प्रतिदिन श्रील प्रभुपाद जी का जो कमरा है, उसको दर्शन के लिए खोला जाता है।
It's exactly the same as it was when Srila Prabhupada was physically on the planet.
तो अभी भी उसी प्रकार से है जब श्रील प्रभुपाद जी स्वयं उपस्थित थे इस धराधाम के ऊपर।
So that means his library is on the wall there.
तो इसका मतलब यह है कि उनके जो पुस्तकालय है, वो उस दीवार पे स्थित है।
His desk is there, the dictaphone they keep.
तो उनका जो मेज है, वो भी वहाँ पे पड़ा है, और वो जो मशीन।
His bedroom exactly the same as it was when he was on the planet.
तो वो जो मशीन जिससे प्रभुपाद जी अनुवाद किया करते थे, वो भी वहाँ पे है, और वो सब बिल्कुल उसी स्थिति में है जैसे श्रील प्रभुपाद जी के समय था।
It's actually a very pleasant room. तो वो lots of light.
बहुत ही सुंदर कमरा है, उसमें बहुत सारे लाइट्स।
The walls are painted a very pleasing turquoise color.
तो जो दीवार है, उनको बहुत सुंदर रंगों से सजाया गया है।
The point is that there is a bookshelf. Now, of course, the bookshelf is locked behind glass. Because some fool might come and take one of the books, even though they don't read Sanskrit.
तो वहाँ पे एक पुस्तकों का जो है अलमीरा भी है, तो अभी तो उसको बंद करके रखा जाता है, क्योंकि कोई भी मूर्ख व्यक्ति आके उसमें से किताब निकाल के ले जा सकता है।
So there are the original books in Sanskrit by Vishwanath Chakravarti Thakur, by Jiva Goswami, Rupa Goswami, the original books which Srila Prabhupada draws from in his famous Bhaktivedanta purports. Those reference books are there in Los Angeles.
तो वहाँ पे वो पुस्तकें अभी भी उपलब्ध हैं, जिसका श्रील प्रभुपाद जी इस्तेमाल करते थे अपने इन तात्पर्यों को लिखने के लिए। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के तात्पर्य, श्रील जीव गोस्वामी के तात्पर्य वाले जो पुस्तक हैं, वो अभी भी वहाँ पे रखे गए हैं।
So therefore we see that Srila Prabhupada's quoting from Vishwanath Chakravarti Thakur.
तो इसलिए हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि श्री प्रभुपाद जी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को इंगित कर रहे हैं।
Prabhupada is not trying to be excessively creative by concoction. See, anyone who does like that is bogus.
तो प्रभुपाद जी कोई ऐसी मनोधारणा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी ऐसा करता है वो धूर्त व्यक्ति है।
So Prabhupada is making it very clear because of Vaishnava Parad, he lost his spiritual strength.
तो प्रभुपाद जी बिल्कुल साफ साफ यहाँ पे लिख रहे हैं, क्योंकि सौबरी मुनि ने अपराध किया था, वैष्णव अपराध, इसलिए उनकी सारी योग बल जो था वो नष्ट हो गया।
He was not able to control his senses as a result of being weakened by offense against Garuda.
तो अपने इंद्रियों को नियंत्रित नहीं कर पाए क्योंकि उन्होंने गरुड़ के प्रति अपराध किया था.
So here the lesson is very, you could say, loud.
तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बहुत उच्च स्वर में जो शिक्षा हमें प्रदान की जा रही है.
Because Prabhupada says that Subari Muni certainly committed a great offense to a Vaishnav.
प्रभुपाद जी यहाँ साफ साफ लिख रहे हैं कि सौबरी मुनि ने एक बहुत बड़ा अपराध किया एक वैष्णव के प्रति.
But here we see that, materially speaking, he had a quote good motive unquote.
तो अगर हम वैसे भौतिक दृष्टि से देखें तो गरुड़ जो है एक पक्षी थे.
What is he trying to do, Prabhu?
तो क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर? He went for taking his dinner. Garuda went to take his dinner.
Garuda went to get his dinner, yes.
So, Garuda,
but what was Subari Muni trying to do was my question. You have to listen carefully to my question.
Maharaj ka prashna hai ki Subari Muni kya kar rahe the us samay.
So what was Subari Muni trying to do?
To Subari Muni kya karne ka prayas kar rahe the? Get married. He was trying to get married. Galat jawab.
Any other speculators?
Aur koi manodharana
kar rahe. No, that, I'm talking about when he was in the water, not after he went to the king. After he went to the king, yes, he wanted to marry one of the beautiful daughters of the king. Yes.
To Maharaj ka prashna hai jab Sabri Muni jal ke andar sthit the to kya kar rahe.
Okay, he says an answer, go.
Tapasya kar rahe the, Prabhu ji ka uttar. He was doing austerity. He was doing tapasya.
He was doing austerity, yes. But what I'm trying to say is, why did he stop Garuda from eating the fish?
Maharaj, ye puchna cha rahe hain ki unhone Garuda ji ko kyon roka machli khane se?
All right, second try. I don't normally give people a second try. He wanted to protect the fish.
Kyun Prabhu ji ne uttar diya? Kyunki wo machliyon ko bachana chahte hain.
In this context, that is mundane.
तो अगर इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये बिल्कुल भौतिक है.
If you want to know something interesting, this is from my personal activities when I first in the first years when I first went to Mayapur.
तो ये बहुत रुचिकर है आपको जानकर बहुत अच्छा लगेगा. मैं जब पहली बार मायापुर गया था.
We're talking about around 1974, so.
तो हम लोग 1974 की बात कर रहे हैं. 1973-1974 की बात कर रहे हैं.
So I was a little crazy. I mean, I did something really crazy.
तो मैं थोड़ा एक अलग किस्म का था उस समय.
You remember? I've told this before.
परमवीर प्रभु आपको याद है महाराज कुछ कह रहे हैं.
I also there were Bengali fishermen out there with their big nets.
तो वहाँ पे जो बंगाली मछली पालने वाले मछली पकड़ने वाले जो मछुआरे होते थे वो भी बड़ी बड़ी अपने जालों के साथ.
And so there was at least 100 or more fish in the net of the fishermen.
तो उनके जाल में 100 से ज़्यादा मछलियाँ फंसी हुई होती थी.
So I also felt sorry for the fish.
तो मुझे भी बहुत बुरा लगा उन मछलियों को देखकर.
I somehow or other got control of the net and I dumped the fish out and back into the water.
तो मैंने उन मछुआरों से वो जाल छीन कर और उन मछलियों को वापस पानी में डाल दिया.
Fortunately, because I was a westerner, the fisherman just thought it was funny.
तो क्योंकि मैं एक फिरंगी था तो इसलिए जो मछुआरे थे उनको लगा कि ये बस ऐसे मजाक कर रहे हैं.
I was very lucky that he could have got together with some of his buddies and beat me. You know, but I was lucky. Instead, he just thought it was funny. Look at this crazy westerner, you know.
It was a crazy thing to do. मेरा सौभाग्य था कि उन लोगों ने पकड़ के मुझे पीटा नहीं. उनको बस यही लगा कि मैं ऐसी मजाक कर रहा हूँ उनके साथ.
But I was also feeling compassion for the fish, but that was not the right action.
तो मुझे भी मछलियों के प्रति दया आ रही थी, हालांकि ये सही कार्य नहीं था.
And also did not represent the Vaishnavas properly because. The man has to make a living. That's his living. You can't tell him to do something else.
तो मैंने एक वैष्णव का सही आचरण भी नहीं किया क्योंकि वो जो व्यक्ति था वो अपना जीवन यापन करने के लिए ये सब कुछ कर रहा था.
So.
तो.
Subari Muni was feeling the problems of old age.
तो सौबरी मुनि को जो वृद्ध अवस्था में जो परेशानियां होती हैं वो महसूस हो रही थी.
And the 42nd verse he says, he's thinking, I am now feeble because of old age.
तो 42वें श्लोक में वो कह रहे हैं कि उनको बहुत दुख हो रहा है क्योंकि वो वृद्धावस्था में हैं.
My hair has become gray.
उनके जो बाल हैं वो सफेद हो चुके हैं.
You know, I used to have nice black hair.
तो महाराज कह रहे हैं कि एक समय मेरा जो बाल है वो बिल्कुल काला
था. Living in Los Angeles.
Los Angeles में.
And they used to put on first-class plays in Los Angeles. There were some very talented actors there.
Los Angeles में भक्त लोग बहुत सुंदर नृत्य नाटिका किया करते थे.
So one of the plays had to do with life of Bhaktivinoda Thakur.
तो एक ऐसा नाटिका प्रस्तुत किया भक्तों ने जिसमें कि श्री भक्तिविनोद ठाकुर की जीवनी.
So I was chosen to play Bhaktivinoda Thakur.
तो मुझे चुना गया था श्री भक्तिविनोद ठाकुर का जो किरदार है वो निभाने के लिए.
I was about 30 years old.
उस समय मेरी उम्र लगभग 30 वर्ष थी.
I didn't have any gut at the time.
तो उस समय मैं बिल्कुल दुबला पतला.
I mean, I had a gut, but it wasn't, you know, sticking out.
महाराज कहते हैं उस समय मैं बिल्कुल दुबला पतला हुआ करता था.
But I mean, Bhaktivinoda Thakur, he was chubby, so if I'm a little chubby, now I'm just falling. Parampara. No, Prabhupada was not chubby like that. But Bhaktivinoda Thakur was.
लेकिन चलो भक्तिविनोद ठाकुर थोड़े तंदुरुस्त हुआ करते थे तो अभी मैं भी थोड़ा तंदुरुस्त हूँ तो मैं जो है परंपरा का पालन कर रहा हूँ. हालांकि श्रील प्रभुपाद जी ऐसे नहीं थे.
So I was 30 years old. I'm playing Bhaktivinoda Thakur was perhaps 60.
तो उस समय मैं 30 वर्ष का था लेकिन मैं श्रील भक्तिविनोद ठाकुर का किरदार निभा रहा था जो कि 60 वर्ष की आयु
में. So they had to put white makeup in my hair.
तो उस समय उन्होंने मेरे काले बाल को सफेद बना दिया.
And my eyebrows.
और मेरे जो भौं हैं उनको भी सफेद बना.
And because my belly wasn't sticking out enough, so they had to draw a black line across my chest and shadow it in such a way. I mean, this is the way it's done in Hollywood, you know.
तो उस समय क्योंकि मेरा जो उदर है वो बहुत बाहर की तरफ नहीं निकला हुआ था तो उन्होंने ऐसा काला रंग का स्याही लगा के और कुछ इस प्रकार से किया ताकि वो लगे.
By using this makeup technique, it was able to seem as though I was more chubby than I was.
तो वो जो मेकअप करके उन्होंने इस प्रकार से मुझे प्रस्तुत किया कि मैं जितना मोटा नहीं था लेकिन मोटा दिख रहा था.
Too bad there wasn't any photographs. And the end actually looked like Bhaktivinoda Thakur. I bushed up my eyebrows, you know.
तो उन्होंने इस प्रकार से मुझे सजाया था कि मैं बिल्कुल भक्तिविनोद ठाकुर के समान लग रहा था.
So it was quite convincing.
तो ये बहुत ही प्रभावित करने वाली बात है.
So anyways, I used to be young.
तो मैं एक समय में.
I mean, of course, when I say I mean, this body used to be young. I am now Yovana, but this body is not, obviously.
So, ये मेरा मैं कहने का तात्पर्य है मेरे शरीर से क्योंकि मैं तो हमेशा नव यौवन हूँ लेकिन जो मेरा शरीर है.
Here, Subari Muni describes old age.
तो यहाँ Subari Muni जो है वो वृद्धावस्था का चर्चा कर रहे हैं.
He says, "My hair has become gray."
वो बताते हैं कि मेरे जो बाल हैं वो सफेद हो चुके हैं.
Looking in the audience, I can see some gray hair.
तो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे कुछ भक्त हैं जिनकी
old age is already coming.
वृद्धावस्था आ रही है.
Quite frankly, if you could make it to age 72, you'll be lucky.
तो अगर आप 72 साल जी पाए तो आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं.
Unfortunately, so many of my god brothers and god sisters, they're dying, and some of them around age 60 or so, leaving their bodies. Unfortunate, very unfortunate.
तो ये बहुत ही अभाग्य की बात है कि मेरे कई गुरु भाई और गुरु बहन हैं जो कि
So he is in an old man body.
तो ये अभी जो Subari Muni है एक वृद्ध शरीर के अंदर है.
He says my skin is slack.
को कह रहे हैं कि मेरा जो चमड़ा है वो बिल्कुल ही
And my head always trembles.
और मेरा जो सर है हमेशा घूमता रहता है.
So he was physically not in very good shape.
तो वो जो है शरीर के स्तर पे बहुत ही अच्छी स्थिति में नहीं थे.
After all, as a yogi, who knows, he might have been thousands of years old, you know.
तो किसको पता है कि योगी होने के नाते हो सकता है उनकी उम्र हजार साल से ज्यादा हो.
But the signs of old age were certainly there.
तो लेकिन जो वृद्धावस्था की निशानियां हैं वो उस समय उपस्थित थी.
And when Vidura was preaching to his brother Dhritarashtra,
तो जब विदुर अपने भाई धृतराष्ट्र को प्रचार कर रहे थे,
he was trying to convince Dhritarashtra, give it up, give it up, give up all this nonsense, give up all this, you know, sense gratification.
तो बार बार वो उनको समझाने का प्रयास कर रहे थे कि छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, ये सारी जो इंद्र तृप्ति है इसको छोड़ दो.
What level of integrity do you have?
तुम्हारी जो निष्ठा है वो किस स्तर की है?
Because Dhritarashtra was blind, so then he could not be in the battlefield.
तो जो धृतराष्ट्र थे क्योंकि वो अंधे थे तो उनके लिए बहुत मुश्किल था जीवन.
So he had a royal tent. I mean, in those days, the kings who were on a battlefield, they would have a really, really high-class tent made with silk and first-class decorations.
हालांकि वो अंधे थे लेकिन क्योंकि वो राजा थे तो उनके पास बहुत ही सुंदर उनका एक टेंट था जिसमें कि बहुत अच्छी व्यवस्था थी. पहले के जमाने में जब युद्ध हुआ करता था तो जो राजा होते थे उनका युद्ध के मैदान में भी जो टेंट होता था बहुत
सुंदर.
वो इस प्रकार से होता था जैसे आप समझ लीजिए कि एक चलता फिरता महल के समान हो. I mean, बहुत ही आरामदायक स्थिति होती थी.
We make nice sense of Kumbh Mela, but it would be nothing like the tent of a king. In the old days.
तो हम लोग भी कुंभ मेला में टेंट बनाते हैं, तंबू तानते हैं, लेकिन जो राजा होते थे उनका जो टेंट हुआ करता था वो बहुत ही अलग होता था.
Beautiful ghee lamps for lighting the place.
वहाँ पे बहुत ही सुंदर घी से जलते हुए.
Every luxury of being in the palace.
वहाँ पे हर प्रकार की सुख सुविधा जो कि महल के अंदर होती थी.
So that's where Dhritarashtra was situated at the time of the battle of Kurukshetra. He couldn't go on a battlefield. He was too old and blind.
तो धृतराष्ट्र क्योंकि बहुत बूढ़े थे और अंधे थे तो वो युद्ध के मैदान पे नहीं जा पाए तो इसलिए वो महल के अंदर स्थित थे.
So how did he find out what was going on?
तो उनको कैसे पता चला कि युद्ध में क्या हो रहा है? Sanjay told him all the incidents that are happening in the field.
Yes, Sanjay was a disciple of Srila Vyasadeva.
तो महाराज ने प्रश्न पूछा कि धृतराष्ट्र को कैसे पता चल रहा था कि युद्ध के मैदान में
क्या
है. तो धीर शांत प्रभु ने उत्तर दिया कि संजय उनको सब कुछ बता रहे थे. तो
Fools think the television was invented in, let's say, the 1960s or something like that, you know, in recent times.
तो जो मूर्ख व्यक्ति हैं उनको ऐसा लगता है कि जो टीवी है उसका आविष्कार 1960 के दशक में हुआ.
They don't know about mystic television.
उनको पता नहीं कि एक जो जादूगरी टेलीविजन होता है,
going back for millions of years.
The illustrations are in the Bhagavad Gita
showing the chest of Sanjay.
तो भगवत गीता के अंदर एक ऐसा तस्वीर भी है जिसमें संजय का जो है सीना.
Where he is acting as a TV monitor. I mean, they're dramatizing the situation.
तो उसमें दिखाया गया है कि कैसे वो जो है एक दूरदर्शन के मॉनिटर के समान काम कर रहे हैं.
And by the mercy of Srila Vyasadeva, he could crystal clear see what was going on the battlefield.
और श्रील व्यासदेव की कृपा से उनको सब कुछ साफ साफ दिख रहा था जो कि युद्ध के मैदान के अंदर हो रहा था.
धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र, you know, so he was, they were, the king was unable to see, so he wanted to know, what did my sons and the sons of Pandur do?
क्योंकि धृतराष्ट्र देख नहीं पा रहे थे तो इसलिए वो जानना चाह रहे थे कि उनके पुत्र और जो पांडु के पुत्र हैं वो क्या कर रहे हैं. तो ये एक जादूगरी टेलीविजन दूरदर्शन.
So after Duryodhan and his 99 brothers, there were 100 sons of Dhritarashtra, and they were all 100 of them are wiped out in the battle.
तो धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे लेकिन 100 के 100 युद्ध के क्षेत्र में मारे गए थे.
So, Yudhishthira Maharaj, being a Mahatma,
तो युधिष्ठिर महाराज क्योंकि वो एक महात्मा है.
He was a king. He was Kshatriya. He was not a Brahmana.
वो एक राजा थे. वो एक क्षत्रिय थे. वो ब्राह्मण नहीं थे.
But a genuine Brahmana must be Mahatma.
लेकिन एक जो बिल्कुल वास्तविक जो ब्राह्मण होगा उसको महात्मा होना चाहिए.
And a genuine Kshatriya, if they're taking the role of king, they must also be Mahatma.
और एक जो वास्तविक क्षत्रिय है वो भी अगर राजा का कर्तव्य निभा रहा है तो उसको भी एक महात्मा के समान होना चाहिए.
So what are they called as a result?
तो इसलिए क्या कहे जाते हैं? वैसे राजा राज ऋषि राज ऋषि
राज ऋषि हरे बोल हरे गॉड
बिल्कुल सही जवाब
Humble devotee, but you all should take his advance his example to answer the question correctly the first time.
तो महाराज इन भक्त की भक्त के बारे में कह रहे हैं कि ये दिखने में बड़े शांत स्वभाव के हैं लेकिन
Rajarshi is a combination of two words Raja. You all know the meaning Raja and Rishi.
तो जो Rajarshi शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है. एक शब्द है राजा जो कि आप सब जानते हैं और दूसरा है
ऋषि. So they were combination.
तो इसका जो योग है संधि है उससे बना है राज ऋषि.
But unfortunately Dhritarashtra was polluted by false ego.
लेकिन जो धृतराष्ट्र था वो प्रदूषित हो चुका था अहंकार के कारण.
Mundane attachment.
उसका जो भौतिक आकर्षण था.
He knew what was to be done, what was not done, but he Prabhupada points out, but he was spiritually blind as well as physically blind.
प्रभुपाद जी बताते हैं कि वो भौतिक स्तर पे अंधे अंधे तो थे ही लेकिन आध्यात्मिक स्तर पे भी अंधे थे.
So, Yudhishthira Maharaj didn't hold any grudge.
तो युधिष्ठिर महाराज के हृदय में कोई ऐसी गलत भावना नहीं थी उनके प्रति.
Now he was the emperor and he had regained his kingdom that had been stolen by Duryodhana.
तो वो अभी राजा थे और वो पुनः स्थापित हो चुके थे और पूरा साम्राज्य उनका था.
So he graciously gave shelter to Dhritarashtra.
तो इसलिए उन्होंने बहुत ही आदर पूर्वक धृतराष्ट्र को उनका सम्मान
दिया. We see the qualities of a Vaishnav.
आप देख सकते हैं कि एक वैष्णव के गुण क्या होते हैं.
He could have been furious. An ordinary person would have been furious and wanted to personally kill him.
हो सकता था युधिष्ठिर महाराज बहुत गुस्से में हो जाते और वो स्वयं धृतराष्ट्र को मारना चाहते.
But Yudhishthira was like Dharmaraj. He was like Dharma personified.
लेकिन युधिष्ठिर महाराज धर्मराज हैं. वो स्वयं धर्म के एकदम रूप हैं.
So instead he gave shelter to elderly Dhritarashtra, gave him complete shelter, nice living in the palace.
तो उन्होंने पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान की और उनको अपने महल में रहने के लिए स्थित किया धृतराष्ट्र महाराज को.
So it was extraordinary. He had no bad feelings even. Just see, even though Dhritarashtra, in one sense, was a brain behind the battle. Well, no, Duryodhana was really the mover and shaker.
Yudhishthir Maharaj ke hriday mein koi bhi aisi durbhavana nahi thi Dhritarashtra ke bare mein. Halanki Dhritarashtra jo tha wo ek bahut bada karan tha jo yuddh hua Kurukshetra ke.
But out of bodily affection and attachment, Dhritarashtra, you could say, was just a yes man to Duryodhana. He just, you know, he couldn't stand up to Duryodhana. Duryodhana had a lot of shakti. The wrong kind.
लेकिन हम देख पाते हैं कि जो धृतराष्ट्र थे वो दुर्योधन से इतना प्रेम करते थे उनकी सारी बातों को जी हाँ कहा करते थे.
So his father just deferred to him on everything out of attachment.
तो वो इतना उनका आसक्ति था दुर्योधन के प्रति कि वो हर चीज दुर्योधन से पूछा करते थे.
So in one sense you could say that Dhritarashtra was king in name only, because in reality Dhritarashtra was acting as a king and just using his father as a puppet. This is very sinful.
तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो धृतराष्ट्र थे वो सिर्फ नाम के राजा थे क्योंकि जो सारा निर्देश है सारा आदेश है वो दुर्योधन से पूछ के दिया करते थे.
So Duryodhana was the last to die of the 100 sons.
तो दुर्योधन आखिरी पुत्र था 100 में से जो मारे गए कुरुक्षेत्र में.
Then Dhritarashtra was invited by Yudhishthira Maharaj to come and live at the palace.
तो युधिष्ठिर महाराज के द्वारा महाराज धृतराष्ट्र उनको ऐसा इनविटेशन मिला उनको.
So he was living Yudhishthira Maharaj was completely honoring his kingly stature. You know, he wasn't giving him saying, "Well, you've done wrong, you rascal, you sinful rascal. We're just going to give you a bungalow on the side with some basics." You know, not like that.
तो युधिष्ठिर महाराज पूर्ण रूप से धृतराष्ट्र महाराज को एक उसी प्रकार का सम्मान दे रहे थे जो कि एक राजा को मिलना चाहिए. ऐसा नहीं कि उनको बोला कि आपका कोने में एक कमरा बना देंगे आपको वहां रहना होगा.
But he was, you know, relaxing and you could call it royal retirement in the palace of King Yudhishthira. He was relaxing very nicely in retirement.
तो धृतराष्ट्र जो है वो पूरा आरामदायक स्थिति में थे महाराज युधिष्ठिर का जो महल था उसके अंदर.
He was eating their food.
वो उनका खाना खा रहे थे.
Drinking their drinks.
उनका जल पान कर रहे थे.
Must have been watching their entertainment if there were
उनके मनोरंजन के साधनों का उपभोग कर रहे थे जैसे जो तो युवतियों का जो नृत्य होता है राजाओं के लिए ऐसा
But Vidura, he had love and affection for his brother.
लेकिन जो विदुर है उनके हृदय में बहुत प्रेम था और बहुत सद्भावना थी धृतराष्ट्र के प्रति.
So just instead of just letting him rot in the palace, he wanted to inspire him, or you could say push him into spiritual life.
तो उनको महल में सड़ने के बजाय वो चाहते थे कि वो आध्यात्मिक जीवन में आगे प्रगति करें.
Now in this there's a great lesson. There's a great lesson of that sometimes preaching is not just sweet flowery words. That's a terrible misconception. Like all preaching should only be it depends. Deshakala patra, you know. I mean, generally when we're talking to public, we should be sweet and polite. But deshakala patra.
तो यहाँ पे बहुत ही महान शिक्षा हमें मिलती है कि जो हमारा प्रचार है ऐसा नहीं कि हमेशा खाली अच्छे अच्छे गोल गोल शब्द बोलने होते हैं. ये समय काल और परिस्थिति के ऊपर बहुत आश्रित है कि हम किस प्रकार का प्रचार
करें. Out of love, Vidura was trying to save his brother.
तो प्रेम के वश जो विदुर है वो अपने भाई भ्राता धृतराष्ट्र को
बचाना चाहते थे.
तो ये करने के लिए उनको जो है उनको करंट देना पड़ा.
Because Dhritarashtra was probably complacent and just enjoying his easygoing retirement in the palace with all amenities, you know.
क्योंकि जो धृतराष्ट्र थे वो बहुत आरामदायक स्थिति में थे और बड़े ही वो थोड़ा आलस्य में आगे थे और
servants, good food, entertainment, whatever he wanted.
तो अच्छा खाना खा रहे थे, मनोरंजन के जो साज सामान उपलब्ध थे उनका भोग कर रहे थे.
So Vidura, he took the tactic of tough love. It's called tough love.
तो जो विदुर हैं उन्होंने ये हथकंडा अपनाया कि जो थोड़ा कठोर प्रेम देने का.
So he said to Dhritarashtra.
तो उन्होंने धृतराष्ट्र को कहा.
Your teeth are loosening.
तुम्हारे दांत झड़ने वाले हैं.
Your hair is falling out.
तुम्हारे जो बाल हैं वो भी झड़ रहे हैं.
Mucus is coming from your body.
तो तुम्हारे शरीर से जो लार निकल रहा है.
These are the signs that his death is approaching.
तो ये सब निशानी है कि मृत्यु आने वाली है.
Now on the last stage of your life, you must take up devotion to the Supreme Personality of God and austerity and penance. After all, you've been very, very sinful. Now you must take to austerity.
तो अब तुम्हें अपने जीवन के अंतिम क्षण में तपस्या करनी चाहिए. तुम्हें चाहिए कि तुम हर प्रकार का तप करो, योग करो.
Only way you can save yourself.
ये सिर्फ यही तुम्हें बचाएगा.
Boom, boom. Heavy preaching. Left punch, right punch. Left punch, right punch.
और उनको दाहिने हाथ से बाएं हाथ से खूब मुक्का मारने के समान ऐसा उनको बोला उन्होंने.
So then, I don't recall the time gap, but it was soon after Vidura. We say in America, give him the sauce, you know.
महाराज कह रहे हैं कि मुझे ये तो याद नहीं कि कितना समय लगा, लेकिन थोड़े समय में ही विदुर के कहने पे जो धृतराष्ट्र है वो महल छोड़ के वो आगे चले गए.
Given the sauce was devotee slang for red hot chili peppers.
तो ये जो महाराज मुहावरा इस्तेमाल कर रहे हैं ये अमेरिका के अंदर भक्त लोग इस्तेमाल किया करते थे.
The Vasuki Nishinga treatment.
तो ये नृसिंह भगवान के उपचार के समान था.
You combine the fire from the mouth of Vasuki with the blazing effulgence of Lord Nrisingadev.
तो जैसे वासुकी के मुख से आग निकलता है उस आग की तुलना जब भगवान नृसिंह देव के शरीर से निकलते हुए कांति.
I mean this is just an example, Nrisinga Vasuki.
तो ये एक उदाहरण मात्र है वासुकी और नृसिंह भगवान का. इस प्रकार जैसे महाराज कर रहे हैं.
Burning everything.
तो जैसे वो सब कुछ जला के राख करते थे वासुकी के मुख से जो आग निकलता था.
So this kind of preaching Vidura was doing.
तो इस प्रकार का प्रचार विदुर कर रहे थे.
So I don't recall the time gap.
तो मुझे याद नहीं कितना समय लगा लेकिन.
But soon after Vidura gave him the red hot chili peppers.
तो विदुर के द्वारा कठोर वाणी बोलने के थोड़े समय बाद ही.
So Vidura came in to the palace, Judarasa was gone.
तो जब विदुर वापस आए थोड़े समय बाद महल के अंदर तो उन्होंने क्या देखा कि धृतराष्ट्र वहां से चले जा चुके हैं.
He was shocked. And Gandhari was gone also. The wife of Judarasa was also gone.
और धृतराष्ट्र की जो पत्नी थी गांधारी वो भी चली गई थी. तो ये देखकर विदुर बहुत अचंभित रह गए.
Vidura was very shocked.
विदुर को बहुत अचंभा हुआ.
What happened to Dhritarashtra?
कि धृतराष्ट्र को क्या हो गया?
So somehow or other, the family members guessed that he had gone to the forest.
तो किसी प्रकार से जो परिवार के सदस्य हैं उन्होंने ऐसा सोचा कि जो
धृतराष्ट्र
वो जंगल चले गए.
He didn't even leave a letter behind. They just.
वो अपने पीछे कोई पत्र छोड़ के तो नहीं गए थे.
Figured it out.
लेकिन बस ऐसा.
Because Dhritarashtra had gone to the forest and began performing severe austerities.
क्योंकि धृतराष्ट्र जंगल जा चुके थे और वहाँ पे कड़ी तपस्या कर रहे थे.
And then he. Using yogic powers, he burst into flames, or he—I don't recall if he burst into flames. Yes, he burst into flames by his own power.
तो अपने योग बल के, अपने तपस्या के बल पे उन्होंने अपने शरीर को स्वयं ही अग्नि में
समर्पित कर दिया. And then Gandhari entered into the fire also.
और गांधारी भी उसी अग्नि में प्रवेशित हो गई, सती बन गई.
So in this way, Subhari Muni is saying, my skin is slack. My head always trembles.
तो इस प्रकार से सौबरी मुनि कह रहे हैं कि कैसे जो उनका शरीर का जो चमड़ा है वो बिल्कुल ही ढीला पड़ गया है और उनका जो सर है वो घूमता रहता है.
Women do not like me.
जो स्त्रियां हैं मुझे पसंद नहीं करती.
Since the king has thus rejected me, I shall reform my body in such a way as to be desirable even to celestial women.
क्योंकि मुझे राजा ने यहाँ से एक प्रकार से निकाल दिया है और मैं जो ऊपर के लोगों की स्त्री हैं उनका संग करना चाहता हूँ.
For to speak of the daughters of worldly kings.
तो ये जो भौतिक राजा हैं उनकी पुत्रियों.
So Srila Prabhupada's point is
that
he entered into this lusty enjoyment mood because of Vaishnava Parad.
तो उनके अंदर ये अपने इंद्रियों को तृप्त करने की भावना इसलिए आई क्योंकि उन्होंने वैष्णवों के प्रति अपराध किया था.
We must learn from this the danger of Vaishnava Parad.
तो हमें यहाँ से यही सीखना है कि वैष्णव अपराध का कितना भयंकर परिणाम हो सकता है.
We see that many prominent men in this movement, very big positions, became puffed up.
हमने देखा इस आंदोलन के अंदर भी कई बड़े बड़े महान भक्त जो है वो थोड़े अहंकार में आ गए, थोड़े गर्वित हो गए.
In several cases, they were responsible for seeing that millions of Prabhupada's books were distributed.
तो कुछ समय, एक समय ऐसा था जब वो इस प्रभुपाद जी के लाखों पुस्तकों के वितरण होने के कारण थे.
They inspired the opening of temples.
उनके प्रेरणा से कई मंदिर खुले.
Making thousands of devotees.
कई हजार शिष्य बने, भक्त बने.
Yet they fell from that position. Why?
लेकिन फिर भी वो अपने स्थिति से च्युत हो गए. क्यों ऐसा हुआ?
वैष्णव अपराध.
क्योंकि वैष्णव के प्रति अपराध.
So we have to be very careful. This is the lesson from this narration as pointed out by Srila Prabhupada.
तो इसलिए हमें बहुत ही सतर्क रहना है वैष्णव के प्रति अपराध से. यही शिक्षा है प्रभुपाद जी यहाँ इंगित कर रहे हैं.
He lost all his spiritual strength. All his spiritual strength he lost.
जो सारी योगिक बल है, जो आध्यात्मिक बल है, वो खत्म हो जाता है अपराध के कारण.
Any question?
आप में से किसी का कोई
प्रश्न है?
हरे कृष्ण. महाराज थैंक यू फॉर द लेक्चर. आई हैव अ क्वेश्चन दैट यू आर टॉकिंग अबाउट द धृतराष्ट्र. सो जनरली व्हेन गॉड अपीयर्स ऑन दिस प्लैनेट सो ही कम्स विद हिज डिवोटीज. सो आई वांटेड टू नो दैट वेदर धृतराष्ट्र वाज अ डिवोटी इन प्रीवियस लाइफ.
प्रोजी का प्रश्न है कि जो भगवान प्रोजी का प्रश्न है कि जो भगवान है. ओके, ही इज आस्किंग महाराज दैट द लॉर्ड अपीयर्स टू सेव हिज डिवोटीज. लॉर्ड अपीयर्स, लॉर्ड इनकार्नेट्स टू सेव हिज डिवोटीज, टू सेव द डिवोटीज. सो धृतराष्ट्र, ही वॉज अ डिवोटी ऑफ द लॉर्ड. In his previous life, Dhritarashtra was a devotee of Lord.
I'm sorry, but I can't really answer that question.
तो प्रभु जी का प्रश्न है कि जो भगवान है वो आते हैं उतार लेते हैं अपना भक्तों की
रक्षा करने के लिए। Anybody recently read the Mahabharata?
तो प्रोजी ने ऐसा प्रश्न पूछा कि जो धृतराष्ट्र है क्या पिछले जन्म में वो भक्त थे? तो महाराज कह रहे हैं कि इसकी जानकारी मुझे तो नहीं है। महाराज पूछ रहे हैं आप में से किसी ने महाभारत अगर पढ़ा है हाल फिलहाल में तो उनको शायद पता हो सकता है।
Yes.
तो ये प्रोजी कह रहे हैं कि वो भक्त थे पिछले जन्म।
He is telling that
धृतराष्ट्र was a devotee in previous life.
Devotee in his last life, then he must have performed the apavrata.
महाराज कह रहे हैं उनको उन्होंने हो सकता है ऐसा अपराध किया होगा तभी उनको इस प्रकार का जो
Being born blind is extreme sin for action.
अगर कोई अंधा उत्पन्न होता है तो इसका मतलब कि उसने बहुत पाप कार्य किए हैं।
Any irregularities of the body such as being born deaf or being born blind, being born with a crippled body, etc. This is all due to sinful action.
तो शरीर में किसी भी प्रकार का विकार है अगर कि बचपन से ही जन्म लेते ही अगर वांधा है या बहरा है या शरीर का कोई अंग जो है वो टेढ़ा मेढ़ा है इसका मतलब
The amazing thing is that we see sometimes devotees in our movement we see sometimes have all kinds of disabilities they may be physically crippled.
तो हम ऐसा कई बार अपने आंदोलन में भी देखते हैं कि जो भक्त हैं उनके अंदर भी कई कोई कभी कभी समस्या आ जाती
है। Their destination is personally determined by Srila Prabhupada, by Prabhupada and by Krishna.
लेकिन जो भक्त हैं उनकी जो स्थिति है वो स्वयं प्रभुपाद जी और कृष्ण के द्वारा निर्धारित की जाती है।
There's one devotee in a wheelchair. He's been in a wheelchair for life, and his body is very distorted actually.
तो महाराज बता रहे हैं कि एक भक्त हैं जो कि व्हीलचेयर पे हैं काफी समय से और उनका शरीर बिल्कुल ही ऐसा है।
I remember hearing perhaps 20 years ago.
तो मैंने 20 साल पहले सुना था।
He was supposed to die.
तो उनकी मृत्यु निश्चित थी।
You know who I'm talking about? You don't know.
आप में से
He's always constantly associating with devotees. Constantly associating with devotees. He's physically deformed and has nothing to do with his Krishna consciousness. He's situated in proper Krishna consciousness. He is, you could go so far as to say, unaffected by his physical condition. His mind is very sharp.
तो वो जो भक्त हैं, वो हमेशा क्योंकि भक्तों के संग में रहते हैं और हमेशा कृष्ण भावनामृत रहते हैं, उनका जो शरीर का विकार है, उनको किसी भी प्रकार से कष्ट नहीं देता और उनका जो दिमाग है, बहुत ही तेज है।
He's doing very nicely in his Krishna consciousness. At this point, he's a senior devotee, you know.
और वो कृष्ण भावनामृत में बहुत अच्छा प्रगति कर रहे हैं। अभी वो एक बहुत ही वरिष्ठ वैष्णव है।
So, in the Bhagavad Gita, Krishna says the intricacies of action are difficult to understand.
तो भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि जो कर्म हैं, उनकी जो गति है, उसको समझना बहुत मुश्किल है।
How all these things are going on, you know.
किस प्रकार से घटनाएं घटित
हो रही हैं? The great mystery of the material energy.
तो ये जो
laws of karma.
भगवान की जो बहिरंगा
शक्ति है,
तो जो प्रकृति के नियम है वो बहुत ही गहन
so we see that even some devotees may take birth homely.
तो हम देख सकते हैं कुछ भक्तों का जन्म बहुत अच्छे घर में होता है।
Others may be very beautiful. This is their prior
हो सकता है कोई बहुत सुंदर है लेकिन ये सब उनके पुराने जन्मों के कर्म के ऊपर तो शायद वो बड़े स्पष्ट होंगे।
थैंक यू वेरी मच जग गुरु श्री महाभारत की जय
जय
ग्रंथ श्रीमद् भागवता की जय
जय
गोपी वरंदे
हरि हरि बोल।